प्यासा और सहरा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक शख्स जो हज के लिए जा रहा था अपने काफिले से पीछे रह गया और एक गर्म और खुश्क बियाबान में भटक गया। घंटों बियाबान में पैदल चलता रहा, यहाँ तक कि तेज धूप और गर्मी ने उसकी सारी ताकत छीन ली और प्यास का गलबा भी शदीद हो गया। न पानी की मश्क उसके साथ थी, न सहरा में कहीं किसी कुएं का वजूद था। इसी तरह गुरूब के वक्त तक पैदल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहाँ तक कि उसे एक फटा पुराना खेमा नजर आया। किस्मत ने साथ दिया था, इसलिए तेजी से उस खेमे की तरफ बढ़ा ताकि प्यास से नजात मिले और खेमे के मालिक से रास्ते का भी पता करे। खेमे के पास पहुंचा तो अंदर देखा कि एक खातून बैठी हुई है। उसने सलाम किया और कहा, ए खातून, मैं बहुत प्यासा हूँ और अपने काफिले से पीछे रह गया हूँ, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने एक मश्क उठाई और एक मिट्टी का प्याला उसे दिया ताकि पानी पी सके। ये शख्स भी सख्त प्यासा था, आखिरी कतरे तक एक सांस में पी गया, लेकिन पानी पीते ही उसका चेहरा मुतगैर हो गया क्योंकि पानी आग से भी ज्यादा गर्म था और नमक से ज्यादा खारी। गोया एक आग थी जो होंठों से बदन में जहां जहां भी पहुंची हर चीज को जलाए डाल रही थी। इसके बावजूद उसने शुक्रिया अदा किया और चटाई पर बैठ गया कि थोड़ी देर आराम कर ले। फिर उसने औरत से पूछा, क्या तुम हमेशा यही पानी पीती हो? औरत ने कहा, हाँ और क्या, मेरा शोहर कहता है कि ये दुनिया का बेहतरीन पानी है। फिर उस शख्स ने पूछा, क्या तुम लोग हमेशा से इस बियाबान में रह रहे हो? क्या कभी किसी शहर नहीं गए? औरत ने ताज्जुब से पूछा, शहर? शहर क्या चीज है? मेरा शोहर कहता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। उस शख्स ने अपने दिल में सोचा, इन बेचारों ने चूंकि अब तक कोई शहर नहीं देखा है, इसलिए समझ रहे हैं कि यही दुनिया की बेहतरीन जगह है और यहाँ का पानी दुनिया का बेहतरीन पानी है। अब चूंकि इसने मुझे पानी पिलाया है और पनाह दी है, तो बेहतर है कि इसे शहरों के बारे में बताऊं ताकि इसे पता चले कि ये खेमा ही कुल कायनात नहीं है। लिहाजा उसने उस औरत से कहा, तुम्हारा मुझ पर एहसान है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें एक मशविरा देता हूँ कि तुम लोग इस जगह को छोड़ दो। कई बड़े शहर जैसे बगदाद, कूफा और इसी तरह के शहर नजदीक में हैं। वहां आसानी से तुम लोग जा सकते हो। वहां जाओ और वहीं अपना घर बसाओ। वहां तुम्हें मीठा और ठंडा पानी मिलेगा। मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं, हमाम हैं और बाजार वगैरह वगैरह है। इस तरह उसने शहर की मुख्तलिफ आसाइशों और खूबियों को बयान किया। औरत उस शख्स की बातों को सुनकर हैरत में पड़ गई क्योंकि अब तक उसने कोई और जगह देखी ही नहीं थी। इस तरह धीरे धीरे शाम होने लगी और उसका शौहर शिकार से लौट आया। अजनबी को देखकर खुश हुआ और उसे हाथ मिलाया। उसने कुछ सहराई चूहे शिकार किए थे, उन्हें अपनी बीवी को दिया और कहा कि रात का खाना तैयार करें। मेहमान सहराई चूहों को देखकर समझ गया कि यहाँ इसके अलावा कोई और शिकार नहीं मिलता। یقیناً یہ میاں بیوی سمجھتے ہوں گے کہ اس سے بہتر شکار دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ مہمان نے رات کے کھانے سے پرہیز کیا مگر کچھ اس طرح سے انکار کیا کہ میاں بیوی رنجیدہ نہ ہوں۔ رات کو مہمان کا بستر خیمے کے باہر بچھا اور وہ وہاں پر سونے کے لیے چلا گیا۔ اس رات تقریباً آدھی رات کے بعد مہمان سو گیا لیکن صحرا میں رہنے والے وہ دونوں میاں بیوی جاگ ہی رہے تھے۔ بیوی شوہر سے وہ باتیں بیان کر رہی تھی جو اس سے اس مہمان نے کہی تھی۔ بیوی نے کہا، کچھ پتہ ہے یہ مہمان کیسی باتیں کر رہا تھا اور کیسے قصے سنا رہا تھا؟ اس کے بعد اس نے تمام باتیں اپنے شوہر کو پوری کی پوری سنا دی۔ مہمان بھی ادھر ان کی باتیں سن کر جاگ گیا تھا اور تمام باتیں سن رہا تھا۔ ادھر وہ شوہر جس کی ساری زندگی اسی بیابان میں گزری تھی خوب ہنسا اور کہنے لگا، بی بی ان باتوں پر دھیان نہ دو، دنیا میں حسد کرنے والے بہت ہیں۔ ایسے لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ مال و دولت اور آسائش میں پل رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ انہیں گمراہ کر دیں تاکہ وہ اس آرام اور آسائش سے محروم ہو جائیں۔ مہمان نے یہ باتیں سن کر دل میں سوچا، واقعی دنیا ایسی ہی ہے، جب کسی کو خلوص سے کوئی مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ اسے حاسدانہ اقدام سمجھتا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور آرام سے سو گیا۔